क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
आज के क्षितिज रेडियो कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी हैं। आपने सामवेद, ईशादि, नव उपनिषद, श्री भगवद गीता, पतंजलि योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन आदि के काव्यानुवाद किए हैं। यही नहीं, आपने वेदों पर शोध कार्य भी किए हैं। आप विश्व हिंदी सम्मान 2023, हिंदी सेवी सम्मान, प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान, सामवेद अनुवाद सम्मान प्राप्त किए हैं आपने। आप बधाई के पात्र हैं डॉक्टर जी। करजोर अभिवादन। हम आपका क्षितिज कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि लेखिका, या जैसे आपने कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया है, तो लेखिका बनने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्या आप बचपन से ही लिखने में रुचि रखती थी? कृपया हमें बताइए।
अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आपको नमन वंदन और स्तवन करती हूँ इतना प्रांजल उद्बोधन और इतना प्रांजल परिचय देने के लिए। इसमें हम जो अपने विषय में, अनुवाद के विषय में, ऋषि जन्य अनुवादों के विषय में प्रवेश करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने नहीं किया, ईश्वर ने किया।
बिल्कुल।
और मैं क्या हूँ, मेरा तो, मैं माटी की किंग करी, जो बूंद पड़े गल जात, और माटी की गुणधर्मिता मेरी कौन विसात। तो जब आपकी अहम मान्यता, जो आपका अहम हटता है, तब वो उतरता है, क्योंकि उसे भी स्थान चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल।
आपका मैं हटेगा तब वो आएगा। तो कदाचित उसी मना स्थिति में, या तो मेरा भव प्रत्यय प्रबल हुआ, पूर्व संस्कार कहिए, ये लंबी बात है और दूसरी बात है, लेकिन यहाँ मेरे अनुवादों का परिचय मांगा गया, तो मैं उसी संदर्भ में आती हूँ। तो पहले सामवेद का अनुवाद किया, उसमें 1875 जो मंत्र हैं उनका अनुवाद किया, और उसका विमोचन उस तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन ने किया। और मैं नारियों के लिए एक बहुत सशक्त विचार देना चाहती हूँ कि मेरा जो पहला ग्रंथ सामवेद था, वो रसोई घर में अधिकतर लिखा गया, और रसोई घर से राष्ट्रपति भवन की मैंने पहली यात्रा की, बीच में कहीं नहीं रुकी।
बहुत बढ़िया।
तो ये केवल मेरा इसलिए है कि अपनी आप ऊर्जा को अगर समेटते तो असंभव कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी अंतश्चेतना को जहाँ लगाते हैं, वही आपका परिचय हो जाता है। तो सामवेद का किया, फिर वो ऐसा एक तरह से इंग्लिश में इंटॉक्सिकेशन कहिए, हिंदी में नशा कहिए, या मेरा उन्माद कहिए, या जो एक सात्विक बिंदु पर ऐसा अटका कि उसके बाद मेरी गति रुकी ही नहीं। फिर ईश के निकट प्रश्न मुंडक, मांडव्यूक, ऐत्रेय, तैत्रीय, श्वेताक्षर, और इन नौ उपनिषदों का अनुवाद हरिगीति का छंद में किया। उसके बाद इसका विमोचन जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया। फिर यात्रा और आगे बढ़ती है, क्योंकि आपके अंतश्चेतना के द्वार खुलते चले जाते हैं, और वो तृप्ति का क्षेत्र नहीं है, कहीं भी वो, उसमें आपको विराम नहीं आएगा। शून्य जो है वो अथाह होता है, और तृप्ति तो जगत की चीज़ों में हुआ करती है, और वो जब अंदर प्रवेश करते जाओ। तो उसके बाद भगवद गीता का किया। भगवद गीता की विशेष बात यह है, गीता का जितने अनुवाद श्रीमद् भगवद गीता के हुए विश्व में, इतने भाषा, भाष्य, काव्य अनुवाद और वो आदि आदि इतने हुए जितने विश्व में किसी भी ग्रंथ के नहीं हुए, ये कदाचित सभी लोगों को पता होगा। यहाँ तक कि थोड़ा सा पीछे जाकर बताती हूँ कि औपनिषदिक परंपरा में ईशावास्य उपनिषद के जो 18 मंत्र हैं, वे ही गीता के 18 अध्याय बने हैं। और आप कभी, जिन्होंने दोनों का अध्ययन किया है, वो बता सकते हैं इस बात को। और भगवद गीता के अनुवाद के विषय में एक जो विशेष तथ्य मैं उजागर करना चाहूँगी, कि अभी मैंने कहा कि बहुत इसमें बृहद काम हुआ है, लेकिन अचानक मुझे विचार आता है कि श्रीमद् भगवद् गीता जो है कान्हा की भाषा में ब्रिज में नहीं है, तो उनके संदेश ब्रिज भाषा में आने चाहिए।
बिल्कुल।
तो ब्रिज भाषा में उसका अनुवाद किया और यहाँ पर मैं क्रम ना बिगड़ जाए इसलिए मैं एक प्रसाद कर श्रोताओं को देती जा रही हूँ। एक मुझे ध्यान में आ रहा है चौथे अध्याय का, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशचि ऐच्छे एतियोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। क्योंकि जो पिछले चार अध्यायों में जाइए आप तो कहीं ज्ञान विषाद में है अर्जुन, युद्ध नहीं करूँगा, मोहित है, मोह से ग्रसित है, मैं इन कुटुंब वालों से युद्ध नहीं करूँगा।
बिल्कुल।
तो दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं तू ऐसा ना कर, तो उसको निष्काम कर्मयोग सिखाते हैं, ज्ञान योग, निष्काम योग, भक्ति योग आदि सब आ जाता। तो चौथे अध्याय में अभी जो मैंने मंत्र बोला तो वो कहते हैं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, तो वासुदेव से कहते हैं निश्चित होकर एक बात कहो, कभी आप ज्ञान योग, कभी कर्म, कभी भक्ति, कभी निष्काम, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो सुनिए इसे ब्रजभाषा में, कबहू कहते निष्काम, कबहू कहते निष्काम, कबहू तुम ज्ञान को श्रेय बताए रहे, फिर काहे बेचारे अर्जुन को तुम कर्मन घोर फंसाए रहे। तो इस तरीके से ब्रजभाषा का माधुर्य इसमें समा जाता है। भगवद गीता के बाद अष्टावक्र गीता का किया, अष्टावक्र गीता के बाद पतंजलि योग दर्शन का किया, सांख्य योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि, शंकराचार्य पर काम, प्राण सूक्त, अथर्व वेद का, और बहुत सारे आत्मबोध, परक्षानुभूति, इस तरह ऋषि जन्य जो परंपरा हमारी है उसको मैं जन भाषा में लाने का प्रयास किया। और कह सकते हैं अनुवाद जो है वो एक तरह का सेतु है, वो चाहे हमारी हमारी भाषाओं का पारस्परिक रूपांतरण हो या किसी अन्य देश की भाषाओं का रूपांतरण हो, तो विनिमय की जो ये प्रथा है इसमें हम बहुत कुछ देते हैं और बहुत कुछ पाते भी हैं। तो अनुवाद का बहुत महत्व है। और एक ये भी मैं श्रोताओं को बताते चलूं कि अपना लिखना तो अपने बस में होता है, कुछ भी लिखिए आप, काट सकते हैं, हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन अनुवाद में हम एक शब्द भी नहीं अपना लिख सकते, हमें ऋषियों के चिंतन को अपने चिंतन में उतार के दूसरी भाषा में और व्याकरण की विधाओं का संवहन करते हुए एक छोटे से श्लोक में, मंत्र में, जो भी आपने लिया, गीतिका, हरिगीतिका, दोहा, चौपाई, सवैया, घनाक्षरी, जो भी लिया, उसमें उनके नियमों का संवहन करते हुए आपको उसमें उस ऋषिजन्य कथ्य को, उसको चिंतन को वहाँ उतारना पड़ता है। मेरी दृष्टि में सबसे क्लिष्ट विधा है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ पाते भी हैं स्वयं में और बहुत कुछ समाज को देते भी हैं।
आपने तो बहुत कुछ कह दिया, आपने गागर में सागर भर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अहम है हम में, मैं को निकाल कर, हम मैं को पहले निकाल देते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं, फिर कुछ लिख सकते हैं। ये भी आपने कहा कि हम गृहस्थ हैं, रसोई घर में हम बहुत कुछ सोचते हैं, हमारे विचार भी बहुत आते हैं रसोई घर में ही, हम काम करते समय बहुत कुछ सोचते हैं फिर लिखते हैं। आपने सही कहा डॉक्टर जी। वेद, उपनिषद आदि तो संस्कृत में है, आपने इनके काव्यानुवाद किए हैं, आपने अभी कहा, आपको ऐसा करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, कहीं से प्रोत्साहन तो मिला होगा?
इसका उत्तर केवल मेरी कुछ पंक्तियां हैं कि कौन देता लेखनी कर में थमा, और कौन फिर जाता हृदय तल में समा, कौन कर देता है उन्मन चित्त को संसार से, कौन तज निसारता मुझको मिलाता सार से, कौन भूमा तक मेरे मन मूल को है ले चला, और कौन गहकर बाह जग से तोड़ता है श्रृंखला।
बहुत तो सुंदर,
उस
बहुत
कौन सुंदर। को तो वो ही जानता है कि सो जो कछु अब परत दिखाई, सकल परम प्रभु की प्रभुताई, मैं कछु नयक न नयक हूँ कीना, प्रतिपालक मोहे आप ही दीना।
बहुत कुछ कह दिया आपने, ये प्रभु की कृपा है हम पर, आप पर तो प्रभु की कृपा बरस रही है, इसलिए आपने इतना सुंदर कहा, आपने इतना लिखा, आपने इतना अनुवाद भी किया, तो प्रभु की कृपा आप पर है।
जी बिल्कुल और उसमें विशेष रूप से जब पतंजलि योग दर्शन और सांख्य योग दर्शन ये कदाचित विश्व के प्रथम काव्य अनुवाद है और संसार इतना बड़ा है तो यहाँ विश्व के प्रथम में मुझे नहीं पता कहीं कुछ हुआ हो लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है और जो इतने बड़े बड़े लोगों को दिखाया तो उस संज्ञान सांख्य योग दर्शन तो प्रथम है जिसको मैंने अवधि भाषा में रामायण की तरह और दोहे और चौपाई छंद में किया है और इन सब का विमोचन मोदी जी ने भी मुझे किया पतंजलि योग दर्शन का सांख्य योग दर्शन का अनुवाद विमोचन मोदी जी ने किया
जी हाँ बिल्कुल बढ़िया बहुत सुंदर। आपको काव्यानुवाद करने में शायद कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा होगा ये भी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कृपया कुछ कहें।
हाँ यहाँ मैं कह सकती हूँ कि ये मुझे लगता है सबसे क्लिष्ट काम है क्योंकि मुझे ऋषियों के चिंतन को अपने चिंतन में उतारना पड़ा
बिल्कुल।
और जैसे आप ये है कि आप तीन शरीर बताए जाते हैं कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर और इतने गहरे उतरने पर मैं ये कहूँगी सबसे बड़ा जो है वैचारिक शरीर है क्योंकि कारण का भी तो कारण कुछ होता है ना तो कारण का कारण आपका विचार है और वो त्रिकाल उसका उसका जो परिभ्रमण है और उसका जो दर्शन है वो त्रिकाल में होता है ये नहीं कि आपने आज जो विचार लिया उसका परिणाम आगामी भी है और उसका कारण अतीत में भी है
बिल्कुल बिल्कुल
तो आज जो आप चिंतन कर रहे हैं वो आपकी चिंतन आपकी कंडीशन क्या है अर्थात आप कौन है आपका परिचय आपके विचार हैं तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि विश्व में जो भी प्राणी हैं व्यक्ति हैं वो उन विचारों का ही परिणाम है अर्थात आपने स्वयं को स्वयं गढ़ा है ईश्वर ने नहीं गढ़ा
जी हाँ जी हाँ।
अर्जुन पूछते हैं कि बताइए आप किस आधार पर जन्म देते हैं जीव को कृष्ण कहते हैं मैं कुछ नहीं करता शरीरम यद वाप्नोति यच्चापित्का मति शराग्रहित वैतानि संयाति वायुर्गंध निवास्यात् जैसे वायु में गंध का समावेश होता है ऐसे ही जब आत्मा अपनी देह को छोड़कर आती है तो वो अपने साथ अपने जैसे वो सुगंध वायु में समावित है ऐसे ही जब आत्मा जाती तो वो अपने साथ सुगंध की तरह विचार भी लेकर आती है तो उन विचारों के आधार पर प्राणियों का जन्म होता है तो इसलिए मैं कहती आनो भद्रा कृतवो यद् विश्वता क्यों कहते हैं मुझे चारों तरफ से शुद्ध विचार प्राप्त हो तो वैचारिक पवित्रता जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक वो मतलब विचारों को आप भ्रमित ना करें विचारों को भ्रष्ट ना होने दें तभी कहा गया कि आप जो है मन वाणी और कर्म तीनों से सत्य रहें और सत्य का आचरण करें।
आपने बिल्कुल बहुत सुंदर वाणी में बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपने विचार रखे बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरी बात है कोई भी कार्य करने के लिए हाँ जैसे आपने कहा प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए आपने अपने गत जन्म का जितने विचार थे शुद्ध थे इसीलिए आप इस जन्म में आगे बढ़ रही हैं आगे अनुवाद कार्य कर रही हैं ये तो बहुत बढ़िया है सभी लोगों को यह नहीं मिलता है आपकी वाणी में माधुर्य है आपकी वाणी में प्रभुता है बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा सुनने को मिला सीखने को मिला हमें जो हम शायद मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ आपने जो व्यक्त किया आपने अपने शब्दों में आप तो मंजे हुए हैं बहुत कुछ आपने कह दिया इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और हमारे श्रोतागण भी आपके विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए होंगे मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने इतने सुंदर सुंदर विचार रखे हैं आप कंठस्थ जानते हैं आपने जो कुछ लिखा है सब कुछ आपके विचार में है आपकी बुद्धि में है पूर्ण आशा है कि हमारी भेंट फिर से होगी कभी न कभी तो हम फिर से मिलेंगे और हमें आपको सुनने का मौका अवश्य मिलेगा नमस्ते।
हाँ मैं आप सबको श्रोताओं को धन्यवाद देती हूँ आपको देती हूँ लेकिन वाणी को विराम देने से पहले एक और प्रसाद कण आपको देती चलूँ कि बहुत प्रसिद्ध है ये कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा और योग के अर्थ में सब कुछ मतलब आज तो इतना विश्वव्यापी हो गया है तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा का एक अनुवाद सुनिए ये है चौपाई छंद में रामायण की तरह कि जही पल थमहि चित्त चंचलता, चित्त वृत्तियन सकल चपलता, मन संयम अरु चित्त निरोधा, तिनहि योग रित सत्य प्रबोधा। अब कभी अवसर मिलेगा तो इसका मैं बृहद व्याख्या करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम फिर से आपको सुनेंगे। बहुत धन्यवाद।